तो आप सब भक्तों का आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है और हम भागवतम के 9वें अध्याय का शीर्षक है अंशुमन की वंशावली और उसके आज 31वें नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तस्य साधुरपापस्य भूरणस्य ब्रह्मवादिना कथं वदं यथा ब्रब्रोर् मन्यते सन्मतो भवान्। तस्य साधुरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिना कथं वदं यथा बभ्रोर् मन्यते सन्मतो भवान्। तस्य साधुरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिना कथं वदं यथा बभ्रोर् मन्यते सन्मतो भवान्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस दीवान गिरी इसी भक्ति दास स्वामी शर प्रभा जी के शर प्रपात की। तस्य उसका साधो साधु पुरुष का अपापस्य निष्पापी भ्रूणस्य भ्रूण का ब्रह्मवादिनः वैदिक ज्ञान में पारंगत कथम कैसे वधम वध यथा जिस तरह बभ्रो गाय का मन्यते तुम सोचते हो सतमतः मान्य भवान आप। अनुवाद इस प्रकार है, तुम सुविख्यात हो और विद्वानों में पूजित हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो जो साधु निष्पाप तथा वैदिक ज्ञान में पटु है। उसका वध करना गर्भ के भीतर भ्रूण नष्ट करने या गोवध के तुल्य होगा। तात्पर्य, जैसे कि अमरकोश में कहा गया है, भ्रूणो अर्भके बाल गर्भे, भ्रूण या तो गाय के लिए आता है या गर्भस्थ शिशु के लिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार गर्भ में जीव के अविकसित भ्रूण को विनष्ट करना गाय या ब्राह्मण के वध के समान पापमय है। भ्रूण में जीव अविकसित अवस्था में रहता है। आधुनिक विज्ञान का यह सिद्धांत कि जीवन रसायनों का संयोग है निरर्थक है। विज्ञानी जन जीवों की रचना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अंडे से निकलने वाले जीव की भी। विज्ञानियों का यह विचार कि वे ऐसी रासायनिक परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जो अंडे के समान हो और फिर उसमें जीवन पैदा हो जाए निरर्थक है। उनका यह सिद्धांत कि रासायनिक संयोग में जीवन हो सकता है इसे तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ये धूर्त ऐसा संयोग ला नहीं सकते। इस श्लोक में भ्रूणस्य वधम आया है जिसका अर्थ है भ्रूण हत्या। यह वैदिक साहित्य में आई हुई चुनौती है। यह समझना कि जीव पदार्थ का संयोग है अत्यंत भोणा तथा नास्तिकतापूर्ण है और नितांत अज्ञान का सूचक है। ये जो प्रसंग चल रहा है ये राजा अंशुमन की वंशावली है और इसमें जो अभी ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें महाराजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से। उनका प्रश्न इस प्रकार था कि सौदस के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को श्राप क्यों दिया, मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय ना हो तो कृपया कह सुनाएं। तो शुकदेव गोस्वामी इसके बाद सौदास के बारे में बताना शुरू करते हैं कि सौदास जंगल में गया था राक्षस का वध करने। तो वहाँ दो भाई थे, उनका एक का तो वध कर दिया था लेकिन एक जो थे वो बच गए थे, उन्होंने क्षमा याचना की थी तो उनको छोड़ दिया था। लेकिन जो दूसरा जो बच गया था उसने बदले की भावना के तहत राजा के लिए क्षति पहुँचाने के लिए कुछ प्लानिंग की। और प्लानिंग किया गया उसने कि जब राजा ने गुरु वशिष्ठ को अपने घर भोजन पर बुलाया था तो उस भोजन में उन्होंने उनको मांस सर्व किया, मांस की सर्विंग की। लेकिन राजा जो वशिष्ठ थे उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से ये पता कर लिया था कि जो मांस है ये एक मनुष्य का मांस राजा मुझे समर्पित कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। तो उन्होंने इसका जब डिटेक्शन कर लिया, पता कर लिया कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने तुरंत ही राजा सौदस को श्राप दिया। और श्राप दिया तो ये श्राप दिया कि तुम भी राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुमने मुझे एक मनुष्य का मांस दिया है भक्षण करने के लिए, तो तुम्हें भी प्राप्त हो क्या, एक राक्षस का शरीर प्राप्त हो। राक्षस शरीर प्राप्त करने के बाद जो सौदस थे वो भी रिटेलिएट कर रहे थे, वो भी श्राप देना जा रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उन्होंने इसको रोका कि श्राप मत दीजिए आप इनको, बल्कि अपने जो आपको ये मिला है आउट ऑफ डेस्टिनी, आपको जो भी ये चीज़ श्राप मिली है उसको इसको भोगने का, इसको इससे गुजरने का प्रयास करिए। इसके बाद जो सौदस थे क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति में आ चुके थे, राक्षस देह में आ चुके थे, तो ऐसे विचरण करते करते वो जंगल में गए। और जब जंगल में गए तो उन्होंने वहाँ पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संग करते देखा, तो उसी तरह उनको बहुत भूख आई कुछ खाने के लिए। तो राक्षसों का जो स्वाभाविक भोजन होता है वो मनुष्य होते हैं, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को उठा लिया खाने के लिए। तो ये जो अब जो प्रसंग चल रहा है जिसमें अभी ये जो दो तीन वर्सेस में गए हैं, ये जो ब्राह्मणी हैं वो प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि आप अपने अस्तित्व को याद करिए, अपने पास्ट को याद करिए कि आप एक राजऋषि थे, और राजऋषि किसी तरह भी एक ब्राह्मण का वध नहीं करते। ब्रह्मवादिना यहाँ पे शब्द आता है कि वैदिक ज्ञान में पारंगत, कि आप वैदिक ज्ञान में पारंगत हैं तो आप किसी भी अवस्था में इस राक्षस इस ब्राह्मण का हत्या नहीं कर सकते आप। और यहाँ पे एक तुलनात्मक चीज़ें बताई गई है जिसमें बता रहे हैं कि बभ्रोर मन्यते, कि कंपेयर किया जा रहा है कि इस ब्राह्मण की अगर अपने हत्या की तो उस हत्या उसी समान से है जैसे गर्भ में जो शिशु होता है उसकी हत्या के समान। तो एक बहुत ही जटिल विषय है, क्योंकि इस पर अगर देखें तो श्री प्रभुपाद जी ने कई जगहों पे अपने तात्पर्य में कई कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं भागवतम में जहाँ पे इस चीज़ पे बहुत प्रकाश डाला हुआ है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की एक विशेषता ये है कि वो आज के मॉडर्न टाइम्स, आज के समय से बहुत कनेक्ट करती है। कहने का अर्थ है कि इसको हम आज के समकालीन समय में देख सकते हैं कि कैसे ये वैदिक शास्त्र बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे हम कई ना पाप कार्यों से बच सकते हैं। तो खास करके आज हम इन तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा कि जो भौतिक समाज है, भौतिक समाज की जो संरचना है वो किस आधार पर है, ये जो आधार क्या है, किस आधार पर ये भौतिक समाज प्रगतिशील है। दूसरा विषय वस्तु होगा डिस्कशन का, जो ये भ्रूण हत्या के ऊपर बता रखा है इस तात्पर्य में उसके ऊपर। और तीसरा हम भक्तों के लिए इसमें क्या शिक्षा है, किससे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपने साधना भक्ति में और जोर शोर से आगे बढ़ने के लिए। तो पहला विषय वस्तु जो प्रभुपाद इस पे हाईलाइट कर रहे हैं वो है कि जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो संरचना है, जो हमारी जो जन्म है, हमारा जो स्रोत है, वो एक रसायन है। इसको प्रूव करने के लिए, इसको साबित करने के लिए बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं विज्ञान के द्वारा। और आज का जो पूरा का पूरा भौतिक समाज जिस तरफ प्रगति करता है उसके पीछे यही एक सबसे मजबूत विचार है। इसमें बहुत सी थ्योरीज आती हैं इसको प्रूव करने के लिए, खास करके डार्विन, इसकी थ्योरी सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि हम सब धीरे 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 पहले बंदर थे, फिर बंदर से धीरे 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 समय के काल के साथ मनुष्य बने। उसके हिसाब से और भी इससे संबंधित थ्योरीज आती हैं। एक मिलर करके एक वैज्ञानिक थे, उन मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब में कुछ गैसेस को लिया था, उन गैसेस में स्पार्क, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक चिंगारी पैदा की थी, और उस चिंगारी से उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की थी कि जब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिलते हैं तो अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं, और अमीनो एसिड्स को बेसिकली कहा जाता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और फिर धीरे 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 वो प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन से धीरे धीरे आगे चल के आपके जीवन का संरचना होती है, जीवन ऐसे आगे बढ़ती है। एक सिंपल सा उदाहरण, इसको अगर आप देखें तो लोग इसको बहुत कोट करते हैं जो वैज्ञानिक क्षेत्र के हैं कि हमारा जो उत्पत्ति है वो रसायन से है ना कि जीवन का स्रोत, जीवन है उसका स्रोत। तो इसमें प्रभुपाद जी के अगर आप एक पुस्तक है अगर आप पढ़ें, जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ये शीर्षक प्रभुपाद जी ने अपने एक बहुत ही प्रिय शिष्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज को एक कॉन्फ्रेंस 1976 में ऑर्गेनाइज करने को बोला था, तो उसका टाइटल ही यही दिया था, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, उसी पे ये पुस्तक लिखी गई है, जीवन का स्रोत जीवन हिंदी में। और खास करके प्रभुपाद जी के वेस्टर्न प्रीचिंग, अमेरिका में जो प्रीचिंग का सबसे बड़ा सक्सेस ये था कि उन्होंने उस समय ना कहीं भी किसी भी फिलॉसफी पे, किसी भी सिद्धांत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, कन्फ्रंट किया था बेसिकली, और उसमें सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन था विज्ञान, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिस जो आज भी थोड़ा साफ सुथरा है। आज भी अगर लोग हर किसी पे कीचड़ उछालें, भले वो धर्म पे उठाएं, चाहे राजनेताओं पे उठाएं, चाहे सरकारी अधिकारियों पे उठाएं, भले कितनों पे उठाएं, लेकिन ये विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे लोग जल्दी उंगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि विज्ञान की हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, और विज्ञान ने समाज की भलाई के लिए कार्य किया है। कई कई वैज्ञानिकों के अगर आप बायोग्राफीज को पढ़ें या उनकी जीवन चरित्र को पढ़ें तो आप देखेंगे कईयों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है समाज के उद्धार के लिए, ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए, ऐसे ऐसे डिस्कवरीज किए हैं जिससे कि मानवता का बहुत उद्धार हुआ है ना। जैसे कि पहले लोग पैदल चलते थे, आज गाड़ी है हमारे पास, पहले एक फ़ोन कॉल बुक करने के लिए आपको काफ़ी बुकिंग करानी पड़ती थी, महीने महीने वेट करना, आपका नंबर आएगा तो फिर आप फ़ोन में बात कर सकते हैं, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। उसी प्रकार से हमें कई लंबी दूरी तय करनी थी तो पहले के समय लोग पैदल चल के जाते थे, लेकिन अब आप घंटों में उसको पहुंच सकते हैं उन स्थानों पे। अब देखते हैं कि विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन योगदान को तो हम उसको स्वीकार करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो बेस्ड है, इसका जो सिद्धांत बेसिस है वो इस आधार पर है, निरीश्वरवाद, कहने का अर्थ है एथिज्म, भगवान के विहीन होके ये सब चीज़ें हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका अगर इतिहास आप देखें तो ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत से आता है। एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक था, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिसने ये पूरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन के नाम, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये इस नाम से उसने एक थ्योरी लिखी थी, एक पेपर लिखा था जिसमें उसने ये चीज़ को बहुत बलशाली रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि हम सब के जीवन का स्रोत खाली रसायन है। लेकिन आप प्रभुपाद जी के इस बुक को जिसको बता रहे जीवन का स्रोत जीवन, इसको पढ़ें तो प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स और सिंपल सिंपल तर्क से इस चीज़ का खंडन किया है। कैसे कैसे सिंपल सिंपल खंडन किया है, एक सरल सा उदाहरण से खंडन किया है कि मान लीजिए हम इस सारे तथ्यों को मान भी लें कि मान लीजिए ठीक है कभी एक धमाका हुआ होगा और धमाके से पूरा संसार आया होगा, या अमीनो एसिड्स वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे अमीनो एसिड्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं, जीवन धीरे धीरे इनसे शुरू होता है, ये सब सत्य है मान लिया, लेकिन इन सबको इकट्ठा करके लाया कौन, इकट्ठा करके लाया कौन, इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं एक बुद्धि होती है, एक बुद्धि होती है। जैसे कई बार किसी से पूछिए कि एक कागज़ का गुलाब बनाना हो तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो लोग कहते हैं कागज़ से गुलाब बनाने में आपको पहले तो कागज़ चाहिए, कैंची चाहिए, फिर आपको गोंद चाहिए, ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ और चाहिए, वो होती है बुद्धि, दिमाग चाहिए उसको बनाने के पीछे। ये एक बहुत कॉमन तर्क प्रभुपाद दिया करते थे। इसी प्रकार से संसार में ठीक है मान लिया कि सारी वस्तुएं ऐसे आई होंगी, लेकिन सारी वस्तुओं को जोड़ने के पीछे, इसके पीछे डिज़ाइन देने के पीछे एक बुद्धि होगी, एक व्यक्ति होगा जो देगा, और ये बहुत कॉमन तर्क था प्रभुपाद का। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, अगर किसी को नोबल प्राइज़ देना है तो वो भगवान होने चाहिए। भगवान क्यों होने चाहिए नोबल प्राइज़ देने के लिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी मशीन बनाई है जिसमें कि आप घास डालिए और दूध निकलता है, गाय जैसे, है ना। मतलब कि आज विज्ञान भी ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकता कि आप उस मशीन में घास डालते हैं और दूध निकलता हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ कि आप घास डाली और दूध निकले। कहने का प्राय ये है कि भगवान इस संसार में है, इस संसार के अस्तित्व का संरचना भगवान करते हैं, और उनको हमें अपने सामने रखना चाहिए, श्री श्री राधा राधे रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसको समझना चाहिए, क्योंकि अब इस आधार पर जब समाज आगे बढ़ता है ना, तो इस चीज़ को खास करके आप देखेंगे जैसे मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री होती है, ये सब इसी कंसेप्ट को इतना बॉम्बार्ड करती है, इतना ब्रेन वॉश करती है व्यक्ति के जीवन में, कि व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि इस संसार का आधार खाली पदार्थ है, पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है, चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। चेतना जो होती भी है वो खाली कुछ समय के लिए प्रकट होती है, अन्यथा ये जो चेतना है ना, ये खाली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल्स, कहने का अर्थ है ये कुछ रसायन का एक्सप्रेशन है। इसी पे हमारा पूरा का पूरा समाज आधारित है। और इसी के कंटेम्प्रेरी एक और फिलोसोफर रहे हैं पास्ट में, जिनको चार्वाक मुनि कहा जाता है। वो कहते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतो भवेत। इस सिद्धांत पे ही पूरा समाज चलता है। कहने का अर्थ है कि ऋणम, ऋण लो, चाहे चोरी करो, जो कर सकते हो करो, क्या करो, घी प्राप्त करो। घी से क्या होगा, घी लेने से आपके शरीर में काफ़ी बल आएगा, काफ़ी इंद्रियां उत्तेजित रहेंगी आपकी, तो उस इंद्रियों से आप पूरे संसार का भोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके ना भविष्य में कुछ है नहीं, ये जो जीवन है यही जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो एक जो जीवन मिला है उसको पूर्ण रूप से आप एंजॉय करने का प्रयास करो। लेकिन प्रभुपाद जी इसका बहुत खंडन करते थे कि नहीं, ये है नहीं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीवन एक जीवन के बाद दूसरे जीवन, तीसरे जीवन, चौथे जीवन में जाते रहता है, बढ़ता रहता है। तो जो आज का जो प्रसंग है, खास करके जो भ्रूण हत्या पे बता रहे हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, इसको कंपेयर किया जा रहा है एक ब्राह्मण हत्या के समान, कि जो भ्रूण हत्या होती है, एक शिशु को उसके गर्भावस्था में वध करना, ये एक ब्राह्मण हत्या के समान या एक गो हत्या के समान बताया गया है। ब्राह्मण हत्या और गो हत्या का अगर आप रिएक्शंस को पढ़ें तो आप देखेंगे बहुत ही बहुत ही बहुत ही पीड़ादायक, सोच के भी आपको मन में पीड़ा हो सकती है कि इतने ज़्यादा भयावस्था से एक जीवात्मा गुजरना पड़ता है। जैसे गाय की हत्या के लिए बताया जाता है कि गाय के शरीर में जितने रोम में जितने बाल होते हैं, उतने बार संसार में हमें जन्म लेना पड़ता है, और इसी प्रकार से हमारा भी वध होता है, जैसे गाय हत्या को लेकर, ब्राह्मण हत्या को लेकर बताया गया, उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है, प्रोजन बताया जैसे। तो इतना ज़्यादा खतरनाक है ब्राह्मण हत्या का। प्रभुपाद जी बताते थे जो गर्भावस्था में बच्चों का वध किया जाता है, अपने कई लेक्चर्स में प्रभुपाद बताते थे कि व्यक्ति को इस एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर होना पड़ता है, और उसकी भी सिमिलरली ऐसे हत्या होती रहती है। कहने का अर्थ है उसका जन्म दोबारा होना बहुत समय बाद होता है। क्यों? क्योंकि इसको विस्तार से प्रभुपाद बताते हैं जगह कि जैसे गर्भावस्था में एक गर्भ से दूसरे गर्भ से तीसरे गर्भ से चौथे गर्भ, ऐसे गर्भावरण होता रहता है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रहा होता है, तो उस अवस्था में बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा जो है भागवतम के तीसरे स्कंद में काफ़ी विस्तार से बताई गई है। खास करके एक चीज़ जो प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं, कहते हैं कि देर इज़ नो विजन ऑफ सनशाइन व्हेन द सोल गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का अर्थ है कि जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो सूर्य की किरणों को जो जीवात्मा है ना, बहुत बहुत वर्षों तक नहीं देख पाता है, बहुत बहुत वर्षों तक नहीं देख पाता है। अब बात आती है कि सूर्य की किरणों में ऐसा क्या विशेषता है, तो एक्चुअली विशेषता है, अगर आप पांचवें स्कंद के भागवतम में पढ़ें तो एक चैप्टर आता है मूवमेंट ऑफ सन, जो सन का जो पूरा जिस तरह से सन चलता है, मनुसत्तर पर्वत के ऊपर और मेरु पर्वत के उसका जो एक्सल होता है, और 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है। तो जो सूर्य की रोशनी है इस 14 भुवन में खाली 3 भुवनों में पड़ती है, भूर भू स्वः, और इसके जो ऊपर के लोग होते हैं स्वः, उसके ऊपर के जितने लोग होते हैं, जन लोग, तप लोग, महर लोग, ये स्वयं प्रकाशवान होते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो नीचे के 7 लोग होते हैं, जो आपके अतल, वितल, दलातल, रसातल, पातल, ऐसे जो 7 लोग होते हैं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं होती है। सूर्य की रोशनी के अपने अलग ही एडवांटेजेस हैं, अलग ही एडवांटेजेस हैं। कैसे, अगर नीचे के लोकों में जाएंगे तो नीचे के लोकों में अगर आप जैसे नागलोक की बात करें, तो नागलोक में जो रोशनी होती है वो नागों के सर पे जो जड़ी हुई मड़ियाँ होती हैं उनके कारण होती है। नीचे के नरक लोकों में जाएं आप तो वहाँ पे देखेंगे आप कि नरक लोकों में जो रोशनी होती है वहाँ जलते हुए लावा के कारण होती है। कहने का अर्थ है जो सूर्य की रोशनी है ये बहुत ही रेयर चीज़ है जो प्राप्त होती है भूर्भुवस्व इन 3 प्लैनेटरी सिस्टम में। उस गर्भ में जो व्यक्ति जिसने हत्या की है उसको जब एक गर्भ से दूसरे गर्भ से तीसरे गर्भ से चौथे गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे उस गर्भ में रहने के कारण उसे वो सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए 13वें अध्याय के भगवद्गीता के अध्याय में भगवान कहते हैं, 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताते हैं, उसमें एक बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि इन चीज़ों को हमें एक दर्शन करना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का अर्थ है कि देखने कैसे, आचार्यों के दिए हुए माध्यम से देखना। क्योंकि अगर आप जन्म मृत्यु को आचार्यों के दिखाए हुए माध्यम से देखेंगे तो ही उसकी एक सही समझ हो सकती है। अन्यथा अगर जन्म मृत्यु को खाली एक लाइफ टाइम देखेंगे, खाली एक जीवन कल पर्यंत, खाली 70 साल 80 साल का जीवन है जिसमें कि हमें भोग विलास करके जीवन त्याग देना है, तो वो जीवन की सत्य दृष्टि नहीं दिखाता है, सत्य सही पिक्चर नहीं दिखाता है। व्हाट इट शोज कि जन्म मृत्यु को अगर हम देखते हैं आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तो समझ में आता है कि एक्चुअली ये जीवन का एक बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा कष्ट है। दिया क्यों गया है ये? रिफॉर्मेशन के लिए, सुधार के लिए। ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के लिए बताया जाता है, देखिए कोई भी जीव आत्मा 4 प्रकार से जन्म लेती है, बताते हैं अंडे के रूप से, फिर आपका पसीना, उसके बाद आपका गर्भ अवस्था से, और एक अवस्था और आती है। ऐसे 4 अवस्थाओं से एक जीव आत्मा जन्म लेती है संसार में। तो अगर भगवान को एक सिंपल, अगर भगवान को चीज़ें सिंपल रखनी थी तो मनुष्यों के लिए भी कोई सरल तरीका बनाते जन्म देने का, है ना, जन्म देने के बच्चों को बहुत सरल तरीका बनाते। अंडों से जन्म लेते तो बहुत आराम से बाहरी शरीर के बाहरी उनका वो भरण पोषण हो जाता है, वो पैदा हो जाते, और जैसे मुर्गियों के होते हैं और अलग अलग जीवों के अंडे होते हैं। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या रीज़न है खास करके? क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कृष्णा वॉन्ट्स अस टू लर्न सम लेसन्स। वाई इज नॉट कि हार्ड हार्टेड, ऐसा नहीं, भगवान कठोर हृदय हैं, कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, कारणवश एक सीख देना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को धीरे धीरे रिफॉर्म कर सकें और इस मनुष्य जीवन जो बहुत ही दुर्लभ है, शास्त्रों में जैसे बताया जाता है 11वें स्कंद में आता है, नर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले न नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, इतने आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने जो कम लाइफ टाइम दिया है ना, स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, इसी में भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, कम समय में ही उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। क्यों ऐसा चाहते हैं भगवान? क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान ने यही एकमात्र योनि बनाई है जहाँ पे उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल पाना बहुत आसान है, बाकी योनियों के लिए संभव नहीं है। 3रे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन आता है कि वो जन्म का कष्ट है क्या, वो जन्म में होता क्या है। वैसे तो 3 कष्टों को तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनुभव करता है इस जीवन में, खास करके इसका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कभी आप जन्म के कष्ट को बताइए तो लोगों को ये चीज़ रियलाइज नहीं होती कि जन्म का कोई कष्ट भी है। जन्म हुआ हुआ किसी को याद है, किसी को याद ही नहीं रहता कि जन्म कुछ हुआ होगा। लेकिन भगवान कपिल अपने 3रे स्कंद भागवतम में इस चीज़ को बता रहे हैं विस्तार से कि जो जन्म है वो कितना पीड़ादायक है। कैसी पीड़ादायक है? शुरुआत करते हैं इसको 3रे स्कंद के 31वें अध्याय से आता है ये वर्स, और यहाँ से लेकर के ये पूरा जो चैप्टर है इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जो गर्भ में जीवात्मा है उनको कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो उसकी बहुत साइंटिफिक शुरुआत से बताते हैं करुणा देव नेत्रेण जंतुर्देह पतय स्त्रिय प्रविष्टम उदरम रेत पुंस रेत कणाश्रय। हाँ, करुणा देव नेत्रेण, कहने का अर्थ है कि कर्मों के आधार पे तो पहले हमें माता पिता प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि इस दुनिया में लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कई सारी चीज़ों का, मोबाइल चुन सकते हैं, फोन चुन सकते हैं, गाड़ियाँ चुन सकते हैं, अपने पहनने के कपड़े चुन सकते हैं, नाना प्रकार के कुछ चुनाव हम कर सकते हैं, लेकिन कोई अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकता। कोई कह नहीं सकता कि भाई मेरे माता पिता ये होने चाहिए, या कोई फॉर्म फिल करके आया है कि हाँ ये मेरे पिताजी हों, ये मैं माता जी हों, नहीं, ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं एग्जिस्ट करता है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपते स्त्रिय प्रविष्टम उदरम, कि एक स्त्री के उदर में प्रविष्ट करते हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इवन जब अबॉर्शन को लेकर के एक एथिकल ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे एक बार केस दायर किया गया था, कई देशों में ये एक्चुअली बैंड भी है अबॉर्शन, खास करके कहते हैं 6ठे महीने के बाद से बैन किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि 6ठे और 7वें महीने में जाके उसमें चेतना आती है, और जब चेतना आती है तो फिर वो जीवित होता है, अन्यथा 5 से 6 महीने तक जब गर्भ में रहता है शिशु तो जीवित नहीं होता है। लेकिन भागवतम बता रही है कि स्त्री अप्रविष्टम उदरम, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कंसेप्शन होता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जीवात्मा होती है वो स्त्री के उदर में प्रविष्ट होती है। कहने का अर्थ है जीवात्मा उस अवस्था में रहती है। फिर धीरे धीरे भागवत में डिस्क्राइब करता है कि छठे दिन, नौवें दिन, इस तरह से दिन प्रतिदिन कैसे कैसे उस उदर का विकास होता है, उस गर्भ का विकास होता है। उस गर्भ के विकास में धीरे धीरे उसकी आंखें आती हैं, नासिकाएं आती हैं, फिर हृदय डेवलप होता है, फिर अलग अलग 9 होल्स बॉडी के होते हैं, 9 चित्र होते हैं, वो डिस्क्राइब किए होते हैं। एक्चुअली बहुत समय तक वैज्ञानिक इन चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन सन 1984 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी साइलेंट स्क्रीम करके, साइलेंट स्क्रीम। वो साइलेंट स्क्रीम में क्या बताया था उस डॉक्यूमेंट्री में, कि जब गर्भावस्था में एक शिशु की हत्या की जाती है, जब एक हत्या की जाती है, उसके भी बड़े अलग अलग प्रकार बताए गए, करीब करीब 16-17 प्रकार बताए गए, जैसे एक अबॉर्शन किया जाता है एक बच्चे का, उसमें वैक्यूम्स के थ्रू किया जाता है, नीडल्स के थ्रू किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू किया जाता है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है कि उन बच्चों को मारा जाता है उस तरह से। तो विज्ञान अपना शास्त्र तो बताते हैं कि ठीक है उस समय ही हमारे उस समय ही आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उस साइलेंट स्क्रीम डॉक्यूमेंट्री में ये बताते हैं कि जब उस जीवात्मा की हत्या की जा रही होती है तो अंदर से गर्भावस्था से भी ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। अब सोचिए इतनी भयावह कंडीशन गर्भ के अंदर, जिसमें कि एक जीवात्मा एक शरीर में तो पहले कैद है, शरीर में कैद होने के साथ साथ वो एक गर्भ में कैद है। गर्भ में कैद होने का क्या दुख है कि अभी थोड़ा देर पैर दर्द करेगा तो हम थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, पैर फैला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 इंच स्पेस भी नहीं मिल सकती आपको पैर फैलाने की, नॉट अ सिंगल स्पेस। इसके बाद कहाँ पे पड़े हुए हैं, पूरे मलमूत्र के सागर में, वहाँ और कुछ नहीं है, अंधकार, पूरा अंधकार। और बताते हैं जो माँ के उदर की जो गर्मी होती है, गैस्ट्रिक फायर जिसको कहते हैं, जो जठाग्नि होती है, उस जठाग्नि का ताप इतना ज़्यादा होता है उस गर्भ के ऊपर कि उस गर्भ में पीड़ा में वो जीवात्मा बहुत कराह रहा होता है, बहुत चिल्ला रहा होता है। ये तो चलिए इतना हो, उसके बाद देखते हैं ना बच्चों की बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, वेरी सॉफ्ट स्किन होती है उनकी, उस गर्भावस्था में उनकी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट होती है। छोटे छोटे जो मलमूत्र में पैदा हुए कीड़े होते हैं, वो कीड़े उसको काट रहे होते हैं, इतनी भयावस्था। उसके बाद भी क्या होता है, उस शिशु की हत्या उसी गर्भ के अंदर। आप सोचिए कितना बड़ा हिंसा है। क्यों इसको ब्राह्मण हत्या के समान बताया गया है, क्योंकि एक जीवात्मा को जिसको भगवान ने कर्मों के आधार से चाहे कृपावश एक गर्भावस्था में प्रवेश कराया, एक मनुष्य शरीर दिया, उस मनुष्य शरीर इसलिए दिया क्योंकि मनुष्य शरीर में वो ग्रेजुअली अपने आप को प्रोग्रेस करा सके, भगवत धाम जा सके, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सके। उसकी एक नेचुरल प्रोग्रेस को हमने बाधित कर दिया, रोक दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। क्यों मार दिया, क्यों खत्म कर दिया, बहुत सारे कारण जो होते हैं लोग तर्क देते हैं, क्यों मार दिया, क्यों कारण कर दिया, क्योंकि हम बच्चों को पाल नहीं सकते, इतनी गरीबी है, इतना समस्या है बच्चों को पालना कि बच्चों को पालने से अच्छा है गर्भ में ही मार दो। मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ 40 से 50 मिलियन अबॉर्शंस ये रजिस्टर्ड है, खाली 40 से 50 मिलियन अबॉर्शंस आपके साल में होते हैं। कहने का अर्थ है अगर इसको निकालें तो कम से कम रोज 125,000 से 50,000 के आसपास अबॉर्शंस चले आ रहे हैं। ये कोई ये तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड के अलावा कितने उसका तो कुछ पता नहीं, कितने ये किए जा रहे हैं। अब सोचिए इस प्रकार का जो जघन्य पाप है वो संसार में लोग कर रहे हैं। इसी चीज़ को प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में अपने एक लेक्चर में बताते हैं वृंदावन 1976 में, ये 5वें अध्याय का 16वां वर्स है, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति अज्ञानतावश क्या करता है, लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर्यो अर्थन संहिते निकाम कामः अन्यो अन्वैर सुख लेश हेतोर अनंत दुःखम च नवेद मूढ़। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति की ये दृष्टि खत्म हो जाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, तो क्या होता है, निकाम काम। यहाँ पे एक निकाम काम का तात्पर्य में प्रभुपाद शब्दार्थ में बता रहे, इंद्र सुख के लिए अनेक काम इच्छाओं वाला कामी। जब व्यक्ति निकाम काम हो जाता है तो ये दो चीज़ें बताती, अन्योन वैर परस्पर ईर्ष्यालु होकर सुख लेश हेतु केवल क्षणिक सुख के लिए क्या करता है, अनंत दुखम अपार कष्टों के थ्रू गुजरता है, अपार कष्ट। कहने का अर्थ है ठीक है इंद्रिय सुख कर लिया उसने, इंद्रिय भोग कर लिया उसने, लेकिन उसके बाद क्या, अपार कष्ट, अनंत दुखम। लोग यूजली कहते हैं कि भाई जी किसने देखा है कि हमारा ऐसा कोई कष्ट होगा या ऐसा कोई दुख आएगा, कोई देखा तो है नहीं, शास्त्रों में लिखा है, लिखे ही है बातें, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन प्रभा इसको कहते थे दिस इज कॉल्ड एज रैबिट फिलॉसफी, एक खरगोश का सिद्धांत। कैसे खरगोश का सिद्धांत, कि जब कभी शिकारी खरगोश को पकड़ने जाता है तो जो खरगोश होता है पहले तो बहुत भागेगा, जहां जहां भाग सकता है भाग लेगा, लेकिन जब देख लेगा मैं भाग नहीं सकता, मुझे को पकड़ने आ चुका है शिकारी, तो क्या करेगा, आग बंद कर लेगा। तो हमारा जो आज का सिद्धांत है वही है कि पहले तो बहुत प्रयास करते हैं लोग, करते 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 और फिर फाइनली समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, घुटने टेक दो, आंख बंद कर लेना। तो कहने का अर्थ है आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। कहने का अर्थ है ये कष्ट जो है, ये दर्द जो है, ये हर उस व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा जो इस भ्रूण हत्या के जघन्य जैसे, इस जैसे जघन्य पाप को करते हैं। हम अपने भक्तों के जीवन में अगर देखें इस प्रसंग का क्या ज़्यादा महत्व है, कैसे इसको समझ सकते हैं, तो यूजली कई बार भक्त पूछते हैं अपने बर्थडे के दिन कि प्रभु जी कि बर्थडे के दिन हमें क्या ऐसा विशेष करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को बड़ा विशेष फील होता है उसका बर्थडे, कि मेरा जो बर्थडे है एक बहुत विशेष उत्सव है, तो मेरा प्राकट्य कुछ बड़े कारण के लिए हुआ है, बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, बहुत बड़े कारण के लिए हुआ, बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। तो एक भक्त पूछ रहे थे प्रभु जी भक्तों के बर्थडे को बर्थडे क्यों बोलते हैं, अपीयरेंस डे की तरह मनाना चाहिए हमें, अपीयरेंस है एक बहुत महान कार्य है, ऑब्वियसली अपीयरेंस मनाना चाहिए आपके परायण के बाद, मतलब कहने का अर्थ है कि अभी जब हैं अवस्था में तो हमें बर्थडे ही मनाना चाहिए, क्यों बर्थडे मनाना चाहिए। तो मैं ऐसे भक्त से चर्चा कर रहा था, उनसे फिर मैंने बताया उनको कि बर्थडे के दिन बेस्ट हमें क्या है, हमें अपने कमिटमेंट्स को याद करना चाहिए कि हम माँ के गर्भ में कुछ कमिटमेंट्स दे के आए हैं भगवान को। ऐसे 10 प्रेयर्स हैं, 10 प्रार्थनाएं हैं, 10 श्लोक हैं भागवतम के 3 स्कंद के 31 अध्याय में, जो कि हमारी कमिटमेंट्स हैं भगवान को, कुछ कमिटमेंट्स दे के आए हम, तो उन कमिटमेंट्स को हर साल याद करना चाहिए बर्थडे के दिन कि इन कमिटमेंट्स पे कैसे हम खरे उतर सकते हैं। तो सारे वर्सेस तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट कुछ स्पेसिफिक वर्सेस डिस्कस कर सकते हैं। ये 3 स्कंद के 31 अध्याय से 14 वर्स है, तो इसमें बता रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 13 वर्स से बता रहे हैं एक वर्स, मैं खाली इंपॉर्टेंट जिसमें संस्कृत वर्सेज हैं उसी पर डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें जो 13 वर्स है जिसमें कह रहे हैं कपिल देव, अस्ते विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आतप्यमान हृदय आवासातिम नमामि। इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड आता है उसमें कहते हैं आतप्यमान हृदय, आतप्यमान हृदय, इसको प्रभुपाद बहुत ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने ट्रांसलेशन में भी बता रहे हैं और इवन अपने पर्पट में बता रहे हैं कि ही इज परसीव्ड इन द रिपेंटेंट हार्ट। मतलब भगवान जो है ना अपने एक एक प्रायश्चित या एक पश्चाताप वाले हृदय में ही रियलाइज किए जा सकते हैं। आई रिमेंबर जैसे हमारा 4-5 साल पहले हिज होलीनेस भक्ति प्रसाद भागवत स्वामी महाराज ने नामृत कोर्स लिया था यहाँ पे, तो उसमें एक सेक्शन आया था कि हाउ कैन अ डिवोटी ट्रांसफर हिमसेल्फ फ्रॉम नाम अपराध स्टेज टू द नाम आभास स्टेज, कैसे जा सकते हैं नाम अपराध से नाम आभास की अवस्था में। तो उसमें महाराज ने प्रभुपाद के इलाहाबाद के एक मॉर्निंग वॉक या कन्वर्सेशन का एक कोट डाल रखा था, उसमें बताया था वी शुड चैंट अटेंटिवली, दैट वो तो होना ही होना है, सारी बात बताया था, हमें पंचतत्व मंत्रों को बड़े ध्यान से लेना चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ बताई थी वी शुड चैंट इन अ वेरी रिपेंटेंट मूड, हमें एक रिपेंटेंस मीन्स पश्चाताप की भावना से हमको इस हरिनाम को लेना चाहिए। किस चीज़ का पश्चाताप, कि भगवान मैंने कितना पाप किया है, मैंने कितना कुछ करने के बाद आपके शरण में आ जाया हूँ, तो आप कृपया मुझे स्वीकार करिए, इस भावना से विथ रिपेंटेंट हार्ट। तो जीवात्मा जब इस अवस्था में होती है, जब ये गर्भ अवस्था में होती है, तो कपिल देव बता रहे हैं क्या होता है उसकी अवस्था, देह अन्य देह विवरे जठराग्नि अन्न शीघ्र विन्न मूत्र कूप पतित भृश्य तप्त देह इच्छान इतो विवसितुम गण्यन स्वमासन निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। कह रही है दीवात्मा कि कैसे उसको इस 7 layers of body, हाँ ये 7 layers of body प्राप्त होती है, और प्राप्त होने के बाद कैसा वो जगह है, वीन मूत्र कूप पतितो भृश्य, ऐसे सागर में डूबा हुआ है जहाँ पे मल मूत्र के सागर में वो पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, और फिर वहाँ पे बैठ के वो गिनती कर रहा है, किसकी गिनती कर रहा है कि कब छूटूंगा यहाँ से, हाँ इच्छन इतो विवसितुम गणयन स्वमासन, गणयन मतलब गणना करना, वो गिनती कर रहा है कि कब मैं यहां से निकलूंगा, और गिनती करते करते क्या कह रहा है, ओ माय लॉर्ड, हे भगवान, हे परमेश्वर, कब कब मैं यहां से आजाद होऊंगा। आप सोचिए कैसे एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, उसकी इतनी जबरदस्त पीड़ा के थ्रू गुजर रहा है, वो वाकई गिनेगा उन दिनों को कि किस दिन मेरी रिहाई आएगी, किस दिन मैं बाहर निकलूंगा। और एक बार मैं बाहर निकला ना, तो क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपकी चैंटिंग करूंगा, आपको याद करूंगा। लेकिन एक आगे के वर्ष में बड़ा एक रोचक विषय, तो परपट प्रभात कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी का कोट करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी गर्भावस्था में रहते हुए भी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। 16 साल तक गर्भावस्था में रहे लेकिन निकलना नहीं चाहते थे, क्यों? तो बाबा बड़ा अच्छा मेंशन कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो स्मरण है ना भगवान का, जो गर्भावस्था में आया है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली जीवों को आता है, हर किसी को नहीं आता स्मरण। कहने का प्राय ये है, स्मरण दो प्रकार के, एक तो जब हम पूर्ण चेतना में होते हैं तो पूर्ण चेतना में अपने इच्छा से, अपने मनोशक्ति से भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी जोर लगाते हैं मन और बुद्धि का, जिससे भगवान के अलग अलग लीलाओं का, रूप का, गुणों का स्मरण कर सकें। दूसरा स्मरण होता है जो भगवान स्वतः देते हैं जीवात्मा की एक सफरिंग, एक पीड़ादायक कंडीशन को देखते हुए, जब उस स्मरण को देखते हैं। प्रभुपाद भी अपने एक भजन में बताते हैं, एक भजन है प्रभुपाद का, उसमें प्रभुपाद इस चीज़ को मेंशन करते हैं, कृष्ण तव पुण्य होवे भाए, तो उसी के एक लास्ट वर्ष में प्रभुपाद कहते हैं आज ही से जो योग, मतलब कि आज मुझे याद आ रहा है आपका स्मरण आ रहा है आपका, आई डोंट नो कैसे आ रहा है स्मरण, कैसे आ रहा है, आपके द्वारा दिया हुआ स्मरण है, लेकिन जो स्मरण आ रहा है एक बहुत ही एक फॉर्चुनेट मोमेंट है हमारे लिए। वही फॉर्चुनेट मोमेंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि उस समय उस जीवात्मा को भगवान का स्मरण आना, ये उसके लिए सौभाग्यशाली स्थिति है। उस अवस्था में सुखदेव गोस्वामी गर्भावस्था से नहीं निकले 16 साल तक, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था, क्योंकि एक बार माँ के गर्भ से बाहर आया तो जो माया की दो शक्तियाँ सबसे प्रमुख, आवरण आत्मिका और प्रक्षर आत्मिका, ये दो जो शक्तियाँ हैं ये मुझे वापस पकड़ लेंगी, और जब पकड़ लेंगी तो मैं फिर भगवान को भूल जाऊँगा, भूल जाऊंगा तो फिर संसार के चक्कर में वापस आना पड़ेगा। 16 साल तक गर्भ में इतने कष्टों से गुजरे महाजन, लेकिन व्यासदेव ने जब उनको वो दिया, आश्वासन दिया कि आप बाहर आओ, आपको कभी भी माया नहीं पकड़ेगी, मैं आश्वासित करता हूँ आपका, बाहर आए भी सुखदेव गोस्वामी। आने के बाद भी अपने पिताजी के आश्वासन पर उनको विश्वास नहीं था भाग गए, जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग गए। क्यों भाग गए? माया ना पकड़े। आप समझने का प्रयास करिए, प्रभुपाद जी इस परफॉर्म में कह रहे हैं द माया इज इनसरमाउंटेबल, कहने का अर्थ है मम माया दुरत्या, इस परफॉर्म में कह रहे हैं मम माया दुरत्या, कि माया को सरपास कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब हम ये गर्भ का वर्णन सुनते हैं और ये जब गर्भ के पीड़ाओं का वर्णन सुनते हैं, तो एक चीज़ जरूर होनी चाहिए कि भगवान हमें किसी व्यवस्था में रखें, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, भगवान हमें किसी अवस्था में रखें, भगवान हमें कष्ट में रखें चाहे हमें सुख की अवस्था में रखें, लेकिन एक चीज़ भक्त जरूर चाहते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें आपका स्मरण हमेशा करवाएं, हमेशा स्मरण करवाएं, क्योंकि आपका स्मरण किसी भी अवस्था से हमें बचा सकता है, भले वो सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था हो, इन दोनों अवस्थाओं से हमें निकाल सकता है खाली आपका स्मरण मात्र। हाँ, इसीलिए बार बार शास्त्र इस चीज़ पे बल देते हैं, इवन कहते भी हैं अंत नारायण स्मृति, ये जो स्मृति है भगवान की, इसको खुद भी प्रयासरत रहना, खुद भी प्रयास करना कि हम जीवन पर्यंतर इस भगवान का स्मरण कर सकें, और इवन भगवान से कृपा की याचना करना कि भगवान आप भी हमें अपना स्मरण दीजिए, है ना, क्योंकि भगवान का जो दिया हुआ स्मरण होता है, भगवान जो हमें अपना स्मरण देते हैं, वो स्मरण के जो मोमेंट्स होते हैं ना, हर भक्त अपने जीवन में कहीं ना कहीं रिलीज करते हैं, कहीं ना कहीं हर भक्त का एक अनुभव होता है कि जो भगवान के द्वारा जो दिव्य स्मरण होता है उसका अलग ही एक एक्सपीरियंस, एक अलग ही फीलिंग होती है, जो हमारे द्वारा जो एंडोवर्स के द्वारा जो स्मरण होता है उससे बहुत अलग होता है वो, लिटिल डिफरेंस कि भगवान के द्वारा स्मरण दिया हुआ और हमारे द्वारा मन बुद्धि के द्वारा प्रयास से स्मरण किया गया हुआ। इस चीज़ को भगवान भी कहते हैं भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 9वें वर्ष में, हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, दैट्स वॉट कृष्ण ददामी बुद्धि योगम, भगवान कह रहे हैं ना, लेकिन क्या उसके लिए अवस्था है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, दो चीज़ें, सतत, पहले तो भभगवान का भजन सतत होना चाहिए, कहने कहते हैं डेली, इट शुड बी ऑन अ डेली बेसिस, और प्रीतिपूर्वक जब भगवान का भजन हो, भगवान की जो जो भी सेवा हो उसमें प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रीति और प्रेम नहीं है तो एक ड्यूटी और एक किसी भी फैक्टर से हो सकता है, ड्यूटी फियर किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन प्रीतिपूर्वक भगवान कह रहे हैं। जब ये दो चीज़ें होती हैं, सतता युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम, बुद्धि बुद्धि प्रदान करते हैं। और वही चीज़ नेक्स्ट वर्स में मेंशन करते हैं भगवान, इस वर्स में जो जीवात्मा प्रार्थना करती है उसमें वर्स करते हैं कि जो इस सफरिंग कंडीशन में आया ना उसका एक कारण क्या था, कह रहे हैं कृपणधी, कृपणधी, कृपणधी का अर्थ है कि वंस इंटेलिजेंस इज़ वेरी माइजरली। इसी भाव को सेम अर्जुन भी मेंशन करते हैं भगवद्गीता के, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कि कृपण, ये कृपणता के कारण क्या हो रहा है, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को। क्या कृपण बुद्धि, एक उदार बुद्धि ना होने के कारण। भगवान की भक्ति, भगवान के भजन से सबसे बड़ा एक जो लाभ होता है एक साधक के जीवन में वो ये होता है कि उसको उदार बुद्धि मिलती है, उदारधी, उदारधी वर्ड यूज़ किया जाता है की जगह, कि भक्त को ये बुद्धि प्रदान होती है जिसके कारण वो भगवान का स्मरण और खास करके वो बुद्धि प्राप्त होती है कि कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, व्हाट्स द वे आउट, क्या तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के, उदारधी। और फिर फाइनली इन परपट के इस प्रार्थनाओं के एक लास्ट वर्स में जा करके आता ये वर्स है जिसमें कि जीवात्मा प्रार्थना कर रही है भगवान से और कह रही है कि अब मेरा समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है किस चीज़ का, जन्म लेने का। हाँ, मैं अब जन्म लेने का समय आ चुका है और फिर आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना कर रही हूँ, फॉर दिस कॉजलेस मर्सी, इस कृपा के लिए कि पहले तो आपने मुझे अपना स्मरण दिया इतने भयावस्था में, आप मेरे परम मित्र हैं, और अपना एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो वर्ड आता है इसमें कहते हैं को नाम तत्प्रति विनांजलि अस्य कुर्यात्। इट सेज तत् को नाम तत्प्रति विनांजलि अस्य कुर्यात्, कहने का अर्थ है फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथों से हाथ जोड़ करके भगवान के प्रति अपना एक आभार प्रकट कर रही है एक जीवात्मा। क्या आभार प्रकट कर रही है कि आपने मुझे इस गर्भावस्था में भी अपना स्मरण दिया, ये सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है जीवात्मा। और कह रही है फर्दर कि अब मेरा जन्म होने वाला है, जन्म होने वाला और हम गर्भावस्था में से बाहर आकर के इस संसार में आने वाले हैं, तो इस संसार में जब हम प्रवेश करें तो वहाँ पे भी भगवान अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा सेम चीज़ भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में बताते हैं, बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया, इस भजन में पूरा एक जीवन का वर्णन देते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि कैसे हम भगवान को भूल करके इस संसार में आए और आने के बाद पे नाना विध व्यथा, इस नाना व्यथाओं के थ्रू गुजर रहे हैं, और फिर उन व्यथाओं का बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे इस संसार में आए, तो स्नेह थे भूलिया, कि माता पिता के स्नेह में अपने परिजनों के स्नेह में हम भूल गए आपको इसको ईश्वर को भूल गए, भगवान को भूल गए उस स्नेह के कारण, और माता पिता ने इतने लाड प्यार से हमें पाला कि भगवान का कोई रिमेम्बरेंस नहीं, कोई भी स्मरण नहीं। और करते करते भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं फिर कैसे मैं विद्या विद्या के लिए विद्या गौरव है भ्रमित देशे देशे, कि विद्या के गौरव में देश देश भ्रमण किया, धन उपार्जन करी, कि धन उपार्जन किया, और फिर फाइनली बुढ़ापे में भक्तिनाथ ठाकुर ने बुढ़ापे में हे भगवान मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूँ कि मैं पूरा जीवन आपको भूल गया, लेकिन पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन अब मैं आपके पास हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें, आप मुझे पुनः अपने चरण कमल की आश्रय दीजिए, कृपा दीजिए। तो ये एक एस्पेक्ट है जो लास्ट के इस वर्ष में बता रहे हैं कि विद द ग्रेटिट्यूड विद द फोल्डिंग हैंड ही प्रेज टू द सुप्रीम लॉर्ड। और इसके बाद फिर फर्दर डिस्क्रिप्शन आता है इस अध्याय में कि कैसे भी जीवात्मा जब शरीर के बाहर आती है तो फिर किस प्रकार से वो माया के वशीभूत होती है और क्या क्या प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी मेजर्स कपिल देव यहाँ बता रहे हैं कि आगे के जो जीवन है उसमें क्या क्या चीज़ों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी फॉर द क्लास, आपने बहुत टेक्निकली समझाया, मुझे बस पूछना चाहता है जो आपने श्लोक्स बताए थे, ये जो जीवात्मा जो गर्भ के अंदर प्रार्थना करती है, क्या हर जीवात्मा करती है या कुछ जीवात्मा ही करते हैं प्रार्थना?
यहाँ पे शुरुआत में बता रहे हैं कि पहले तो खाली मनुष्य जीवन में ही ये प्रार्थनाएं हो पाती हैं, किसी और योनि में प्रार्थना भी नहीं हो सकती, और दूसरा कि वही जीवात्माएं प्रार्थना कर सकती हैं जिन्होंने काफ़ी पुण्य कर रखा है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पुण्य कर रखा है, वही जीवात्माएं प्रार्थना कर पाती हैं। नहीं तो उन क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं भगवान स्मरण भी नहीं देते हैं, वहाँ पे जीवात्मा अपने प्रयासों से स्मरण कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतना दुख है कि इतने दुखों में व्यक्ति अपने प्रयास से स्मरण नहीं कर सकता भगवान का। तो वहाँ भगवान खुद उनको स्मरण दे रहे हैं वहाँ पे, और जो स्मरण दे रहे हैं तो उस स्मरण में वो अपना एक आभार प्रकट कर रही है भगवान के प्रति कि कैसे भगवान ये आपने मुझे इस अवस्था में रखा। तो बड़ी अच्छी प्रार्थना है ये 10 वर्ष में।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी आवरण आत्मिका प्रक्षेप आत्मिका, प्रक्षेप आत्मिका आवरण आत्मिका प्रक्षेप आत्मिका।
प्रभु जी हरे कृष्ण। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि हमारे ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें 12 स्कंध हैं, तो तृतीय चतुर्थ 2 पार्टों में है और एकादश स्कंद 2 पार्टों में है, लेकिन जो 10वां स्कंद है वो 4 बृहद 4 उसमें हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि ये 10वां स्कंद इतना बड़ा क्यों है। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो 10 मतलब है एक, जैसे गिनती 9 तक ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद जब 10 शुरू होता है एक के बाद 0 तो उसके बाद बड़ा उसका एक तरह से महत्व हो जाता है, यानी कि 10। तो जो इसमें शायद भगवान के जो लीलाएँ वो विस्तृत रूप से हैं, या तो ये वजह है। अब हमारे खिलाड़ी जो बड़े बड़े हैं उनको भी तेंदुलकर है, जो दूसरे मैराथनों बड़े उनको भी 10 नंबर दिया जाता है, या एक इसका विपरीत भी है ये बड़ा 10 नंबरी है। तो मैं ये जानना चाहता था ये 10वां स्कंद को ही इतना महत्व ज़्यादा इसमें है, ये क्यों है प्रभु जी?
एक्चुअली कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो शास्त्र के पीछे एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है क्यों लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से भागवतम का जो उद्देश्य लिखने का है, जो प्रभाष सूत्र बताते हैं भागवतम का है, वो है एत चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोगम मृदंत योगे योगे। तो ये जो वर्ष है ये 1 स्कंद के 3rd अध्याय के 28वां वर्ष है ये। तो इसमें इसको प्रभाष सूत्र बताया गया भागवतम का, और यही प्रभाष सूत्र क्या होता है वो शुरू में ही डिफाइन कर देता है कि सब्जेक्ट मैटर भागवतम का क्या होगा। तो पूरे भागवतम का एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर भगवान कृष्ण ही है। तो जो 1 स्कंद हैं वो धीरे धीरे ना एक सीन बिल्ड कर रहे हैं, एक स्टेप बिल्ड कर रहे हैं 10वें स्कंद में प्रवेश करने के लिए। तो इसीलिए 10वां स्कंद सबसे विस्तार में है, और 10वें स्कंद में सबसे ज़्यादा वर्णन भगवान का ही है, क्योंकि भगवान ही स्रोत हैं हर चीज़ का, अहम सर्वस्व प्रभवो, इसी चीज़ की स्थापना सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और इस कारण से कृष्ण ही एक्चुअली मूल भगवान है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रायः ये समझाता है कि कृष्ण भी अवतारी हैं, जैसे भगवान के अलग अवतार हैं, जैसे बहुत सारे अवतार आए हैं वैसे भगवान भी एक अवतार हैं विष्णु के, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ही अवतारी हैं। इसलिए कहा है उनको अवतारों की लिस्ट में नहीं डाला गया है, इस अवतारी, और इसीलिए एक स्पेसिफिक कहते हैं एक एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्शन उनका 10वें स्कंद में प्राप्त होता है, ये इसका अंडरस्टैंडिंग है।
हरे कृष्ण भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। एक प्रश्न उठता है भाई, मतलब जैसे भ्रूण हत्या के विषय में आपने बताया कि भ्रूण हत्या के विषय में कि आप जो भ्रूण हत्या करता है उसको भी भ्रूण हत्या द्वार से घर में जाके मरना पड़ता है, देन नेचुरली सम क्वेश्चन कम्स कि मतलब जो मरता है भ्रूण हत्या में मर रहा है तो क्या अपने कर्मों के कारण मर रहा है या फिर जो मार रहा है वो भी द्वार से उसको पाप लगेगा?
बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर चीज़ में आता है ये। इसलिए भगवान कहते हैं ना वर्ष कर्मणों ही बोधव्यम बोधव शिवकर्मणा कर्मणश्चोद्यम कहना कर्मणों गति। इसीलिए कहली चीज़ तो यह है कि कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए भगवान ने डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं कि कर्मणों ही बोधव्यम, जान लीजिए क्या करना है, बोधव्यम से विकर्मणा, जो नहीं करना है वो भी जान लीजिए, और फिर अकर्म क्या है वो भी जान लीजिए, और ये सब जानने के बाद ये जान लीजिए कि कर्म की गति नहीं समझ सकते। गहना कर्मणों गति। तो अब ये कौन कॉज है कौन इफेक्ट है इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग है कि कर्मा की जो फिलॉसफी है इसको कभी पोस्टमार्टम के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। कहने का अर्थ है किसी क्रिया के होने के बाद नहीं उसका एनालाइज कर सकते, बेहतर उसके इस्तेमाल किया जाए उस क्रिया को ना करने के लिए। तो ये कर्मा की अंडरस्टैंडिंग होती है।
हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने बताया 2 सत्यम गर्भ के बाद आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, तो क्या गर्भ में रहना माया के प्रभाव से मुक्त होना है क्या?
गर्भ में रहना,
गर्भ में जब तक भ्रूण है तब तक वो माया के प्रभाव से मुक्त है क्या?
नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी लिख रहे हैं प्रभाव, नहीं माया का प्रभाव वहाँ भी है यहाँ भी है।
बाहर आने के बाद उस पे आवरणात्मक और
प्रत्यक्ष, हाँ, ये दो स्पेसिफिक पोटेंसीज हैं जो एक्ट कर जाती हैं उस टाइम पे,
उस समय नहीं होता।
ये दो पोटेंसीज वहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब वो दो अवस्थाएं वहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन वो ये जो स्पेसिफिक केस स्टडी है ना उनके लिए है, जो कि खास करके कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति किए होंगे, कहीं ना कहीं कोई पुण्यात्मा रहे होंगे जिनको भगवान ये स्मरण दे रहे हैं क्योंकि वो प्रार्थना कर सके जीवात्मा उस अवस्था में, अन्यथा उस अवस्था में कोई जीवात्मा प्रार्थना नहीं कर सकती उतने कष्टों में भगवान से।
तो जो प्रेयर्स कर रही हैं उनका बर्थ होना फिर कन्फर्म्ड है, उनकी भ्रूण हत्या नहीं होगी क्या?
ऑब्वियसली कन्फर्म्ड है, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसी पायस सोल्स हैं जन्म ले रही हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है जन्म लेने की, तो ये माना जाता है कि माता पिता भी तो कहीं 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 ना कहीं पुण्य किए होंगे।
इट मीन जैसे प्रेयर्स जो कर रही हैं बदात्मा वो बर्थ जन्म लेंगी लेंगी, उनकी भ्रूण हत्या नहीं होगी, कन्फर्म्ड है?
नहीं, ऐसा नहीं, कोई कन्फर्मेशन है इसमें भागवत में ऐसा तो नहीं।
अगर वो वहाँ पे प्रेयर्स करेंगी तो फिर भगवत धाम जाएंगी क्या?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते,
क्योंकि अंत काले च मामे वा स्मरणुक्ता कलेवरम भगवान कह रहे हैं।
नहीं, स्मरणुक्ता कलेवरम का अर्थ ये है कि स्मरण हमें प्रयास करने अपनी तरफ से, भगवान के द्वारा स्मरण दिया गया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्मरणुक्ता कलेवरम का अर्थ ये है कि हमें खुद से पहले प्रयास करना है स्मरण का भगवान का, और स्मरण भगवान का जब पूरे जीवन पर्यंतर करेंगे ना तो भगवान उस एंडेवर्स को देख के खुद अपना स्मरण देंगे। बहुत वेज स्मरण एक हम खुद से करते भी हैं एंडेवर्स, और दूसरा भगवान के द्वारा दिया हुआ स्मरण भी होता है। ये जो मैंने स्पेसिफिक बताया ये स्मरण भगवान के द्वारा दिया हुआ है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जीवात्मा के पिछले पास्ट लाइफ्स को देखते हुए दिया गया स्मरण है ये चीज़।
थैंक यू भाई, हरे कृष्ण।
जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की नित्य गौर प्रेमानंदे।